हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अपनी अपनी मजबूरियों के चलते एक दूसरे का साथ निभाते हुए आंशी और अमन ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। शादी करने के बाद वो हॉल से बाहर निकले तब अमन की टीम उनका इंतजार कर रही थी। उनमें लावण्या भी थी। उसने जब उन दोनों को साथ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। अमन ने उसके चेहरे की तरफ देखा, उसे भी उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। आंशी ने ध्यान दिया, अमन लावण्या की तरफ देख रहा है। तब उसने दबी आवाज में कहा, यहाँ से निकलने के बाद आप उनसे बात कर लेना। अमन ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, वो तो करना ही है, पर जो भी हो रहा है उसकी नींव कहीं ना कहीं उसी ने रखी है। आई होप वो सब समझ जाए। थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए, आंशी ने मुस्कुराकर कहा। रोबिन और मेलिसा के गुंडों ने उन सबको आज़ाद कर दिया था। अमन और आंशी साथ में टीम की गाड़ी में थे। जस गाड़ी ड्राइव कर रहा था जबकि मिस्टर गुप्ता उसके पास बैठे थे। पीछे की सीट पर अमन, आंशी और लावण्या थे। कुछ सोचा है आगे क्या करोगे, मिस्टर गुप्ता ने पूछा। अमन उनकी बात का जवाब देता उससे पहले आंशी बीच में बोल पड़ी, एक सेकंड, इसमें सोचना क्या है, आप हमें गलत समझ रहे हैं। ये शादी हमने एक दूसरे को बचाने के लिए की है, अब तो बच गए हैं ना। तो वो बोलते हुए चुप हो गई। अमन ने उसकी बात को आगे बढ़ाकर कहा, जस आंशी को उसके घर ड्रॉप करना है, उससे पहले किसी मॉल में चलो ताकि इसके लिए हम दूसरे कपड़े ले सकें। लेकिन ब्रो, आप दोनों की शादी हो गई है, आपको इन्हें अपने घर ले जाना चाहिए, जस ने जैसे ही कहा लावण्या उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। तुमने सुना नहीं, इन्होंने ये शादी एक दूसरे को बचाने के लिए की है। काम हो गया तो शादी का भी कोई मतलब नहीं रहता। वैसे भी ये शादी लीगल तरीके से नहीं हुई है और ना ही ये कहीं पर रजिस्टर्ड है, ना ही ये दोनों इस शादी में इंटरेस्टेड हैं। फिर कौन सी शादी, तुम्हें जितना कहा है उतना करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, लावण्या ने सख्त आवाज में कहा। हाँ ये ठीक कह रही है, वैसे भी दो दिन बाद मेरा स्विट्जरलैंड का फ्लाइट है। आंशी ने बताया, तुम कहीं नहीं जा रही हो, कल तुम अमन के साथ सिक्योरिटी एजेंसी ऑफिस जाओगी और अपना स्टेटमेंट दोगी। तुम्हें विधिक राणा के बारे में जो भी पता है उसकी हर एक डिटेल के बारे में बताओगी। अगर तुम्हें क्लीन चिट मिली तभी तुम स्विट्जरलैंड जा पाओगी। एंड वन मोर थिंग, अगर तुमने हमारी आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, लावण्या ने कहा। आंशी उन सबसे अनजान थी, वो लावण्या की बातें सुनकर घबरा गई। उसने अमन की तरफ देखा, तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे सबसे प्रोटेक्ट करोगे, इतनी जल्दी भूल गए। मैं कुछ नहीं भूला हूँ, पर तुम्हें अपना स्टेटमेंट देना ही होगा, अमन ने जवाब दिया। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हूँ, तुम लोग मुझे जेल ले जाना चाहते हो और वहाँ मेरे साथ टॉर्चर करोगे। हाँ अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करना पड़ सकता है, कोशिश करना, गलती से भी झूठ ना बोलो, लावण्या ने आंशी की बात का जवाब देते हुए कहा। उसकी बातें आंशी के दिल में डर पैदा कर रही थीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तुम्हें मुझे अरेस्ट ही करवाना था तो मुझसे झूठे वादे क्यों किए। आंशी लावण्या की बात का जवाब देने के बजाय अमन से बात कर रही थी। उन दोनों के बहस करने की वजह से अमन इरिटेट हो गया। वो चिल्ला कर बोला, फॉर गॉड सेक तुम दोनों चुप हो जाओ, लावण्या तुम इसे क्यों डरा रही हो, एंड आंशी तुम्हें कोई अरेस्ट नहीं करने वाला, वहाँ एक नॉर्मल पूछताछ होगी जहाँ मेरे साथ टॉर्चर किया जाएगा, आंशी ने उसकी बात काटते हुए कहा। अमन आंशी और लावण्या के बीच फंस गया था। जस और मिस्टर गुप्ता चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ब्रो की अभी से ये हालत हो गई है तो आगे क्या होगा, सोचकर ही मुझे तो एक्साइटमेंट हो रहा है, जस बड़बड़ा कर बोला। कुछ ही देर में वो लोग एक मॉल के आगे थे। वो सब गाड़ी से बाहर निकले और अंदर गए। अमन ने आंशी के लिए एक ड्रेस खरीदा और उसे लेकर वो चेंज करने के लिए चली गई। वो चेंजिंग रूम में थी और अपने गहने निकाल रही थी। सब कुछ निकालने के बाद उसकी नज़र मंगलसूत्र पर पड़ी। क्या सच में ये शादी कोई मायने नहीं रखती? हाँ शायद नहीं, उसने मेरे साथ जो भी किया उसके बाद मेरे दिल में उसके लिए जो था वो भी खत्म हो गया। उसने अपना मिशन पूरा करने के लिए मेरा यूज किया, शायद वो पहले दिन से ही मेरा सच जानता था, तभी अपने पास रखा, अपनी निगरानी में रखा, मुझे घर तक छोड़ने आता था। पुरानी बातों को सोचकर आंशी की आंखें नम हो गई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और साथ ही अपने मांग में अमन के नाम का सिंदूर हटा दिया। उसे ये सब करते हुए बहुत तकलीफ हो रही थी। आंशी अंदर काफी टाइम लगा रही थी, बाहर सब उसके आने का इंतजार कर रहे थे। वो इतना टाइम क्यों ले रही है, कहीं वो विधिक से कॉन्टैक्ट तो नहीं कर रही है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके टाइम ज्यादा लगाने पर लावण्या ने कहा। What's wrong with you, Lavanya? मैं आंशी के सामने कुछ बोल नहीं रहा था. इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सच या झूठ का पता नहीं चलता. वो पूरी तरह इनोसेंट है और उसका स्टेटमेंट मेरे अलावा और कोई नहीं लेगा. रही बात आगे की, तो मैं भूला नहीं हूँ तुमने और तुम्हारी बहन ने मेरे साथ क्या किया. तुम दोनों की वजह से आज मेरी जॉब जाने वाली थी. अमन का सारा गुस्सा लावण्या पर निकल रहा था. लावण्या उसकी बात का कुछ जवाब देती कि तभी आंशी वहां आ गई. उसने नॉर्मल जीन्स और टी शर्ट पहना था. उसके हाथ में शादी का जोड़ा और उसके पहना हुआ बाकी सामान था. इसका क्या करना है, उसने बाहर आते ही पूछा. मुझे दे दो, मैं हैंडल कर लूंगा. अमन ने आंशी से सारा सामान लेकर वहां काम करने वाले लोगों को दे दिया ताकि वो उसे पैक कर सके. मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, आंशी ने लावण्या की तरफ देखकर कहा. तुम मुझे लुक क्यों दे रही हो, थोड़ी देर पहले तो बड़ी समझदारी वाली बातें कर रही थी. ये शादी हमने एक दूसरे को बचाने के लिए की है. मैं कहीं नहीं जाने वाली. जो बात करनी है मेरे सामने करो. मत भूलो हम दोनों एंगेज्ड हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं. लावण्या ने वहां से जाने से साफ इनकार कर दिया. मैं नहीं भूल रही, पर तुम भी मत भूलो कि अब हम दोनों की शादी हो गई है. तुमसे ज्यादा हक मेरा इस पर बनता है. ऐसा करो, तुम दोनों कहीं मत जाओ और यहीं खड़े होकर कैट फाइट करती रहो. मैं ही चला जाता हूँ. उन दोनों से परेशान होकर अमन वहाँ से जाने लगा. आंशी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा. चुपचाप यहाँ खड़े रहो, मुझे तुमसे बात करनी है. तुम मुझसे भाग नहीं सकते हैं. अमन ने इशारे से लावण्या को वहाँ से जाने के लिए कहा. उसके कहने पर मजबूरी में उसे वहाँ से जाना पड़ा. उसके जाते ही अमन ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं. अभी उनका जवाब देने का सही टाइम नहीं है. घर जाकर आराम करो. कल मैं तुम्हें एजेंसी ऑफिस ले जाने के लिए घर आऊँगा और मेरे होते हुए घबराने की जरूरत नहीं है. वहाँ स्टेटमेंट देने के बाद तुम्हें मुझसे जो पूछना है पूछ लेना, मैं सब बताऊंगा. अमन आंशी को समझाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ में वो मंगलसूत्र रख दिया जो शादी करते वक्त उसने उसे पहनाया था.
मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना और ना ही पूछना है. अब तक इसलिए मेरे साथ थे ना क्योंकि तुम्हें पहले दिन से मुझ पर शक था. तुम एक सीक्रेट एजेंट हो, विधिप के पीछे थे. उसकी लाइफ का पता लगाते हुए तुम्हें मेरे बारे में पता चला. मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ. जब मैं तुम्हारे ऑफिस में आई तो वहाँ कोई जॉब वैकेंसी नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे काम पर रखा. उस दिन उस गुंडे से बचाया. मैं भाग ना जाऊँ इसलिए सुबह मुझे लेने आते थे और शाम को ड्रॉप करने. और मैं पागल समझती रही थी तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स ग्रो हो रही हैं. उससे बात करते हुए आंशी की आवाज़ भारी होने लगी. उसकी आंखों में आंसू थे. ऐसा नहीं है आंशी, अमन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था. तभी आंशी बीच में बोली, प्लीज ऐसा कुछ मत कहना जिससे मेरे लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाए. मैं भी एक इंसान हूँ और बार बार दिल टूटना बर्दाश्त नहीं होता. मुझे हर बार गलत इंसान से ही प्यार क्यों होता है. अपनी बात कहकर आंशी बाहर चली गई. उसके साथ अमन के बाकी टीम मेंबर्स भी थीं. इस बार आंशी जस के साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी जबकि बाकी के टीम मेंबर्स पीछे थे. कुछ ही देर में वो आंशी के घर के आगे थे. पूरे रास्ते उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा. अपना घर आते ही आंशी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगी. उसने एक बार भी मुड़कर उन लोगों की तरफ नहीं देखा. लावण्या उसे जाते हुए देख रही थी. उसे आंशी के बर्ताव पर काफ़ी हैरानी हुई. उसने अमन से पूछा, ऐसी क्या बात हुई थी तुम दोनों में जो ये इतनी चुप हो गई? ये कल आएगी ना स्टेटमेंट देने के लिए? अमन ने जवाब में हाँ में सिर हिलाया. जस, गाड़ी एजेंसी ऑफिस लेकर चलो. ओके ब्रो, जस ने जवाब दिया और गाड़ी एजेंसी ऑफिस की तरफ बढ़ा ली. अमन आंशी के बारे में सोच रहा था. कैसी मजबूरी है ये, शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने के बावजूद भी तुम मेरी नहीं हो सकती. मेरी होकर भी मैं तुम्हें सबके सामने अपना नहीं सकता. और अब तो तुम मुझे गलत समझ रही हो. एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो देती. हाँ, जानता था मैं तुम कौन हो, पर मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं था कि तुम भाग ना जाओ. मैं बस तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करना चाहता था. प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ. हमारे पास साथ रहने का इतना अच्छा मौका था, पर तुमने इस शादी को झुठला दिया. फिर भी मैंने एक बार भी तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा. तुमने जो कहा जैसे कहा सब मान लिया सिर्फ तुम्हारे लिए. अब तो समझ जाओ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ. अमन की आंखों में आंसू थे. उसने सबकी नज़रों से छुपकर उन्हें साफ कर लिया. वो लोग एजेंसी ऑफिस पहुंच चुके थे जहां उन्हें मिस्टर तेज प्रताप दत्त के सवालों का जवाब देना था. अमन के पास वो रिकॉर्डिंग भी थी जो उसने विधिक की मीटिंग के दौरान की थी. वहां पहुंचते ही उनकी मीटिंग शुरू हो गई. अमन की टीम और तेज प्रताप दत्त के अलावा उस मीटिंग में और कोई नहीं था वहाँ। आते ही अमन ने सबसे पहले रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। चलो, उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे जाते हुए कुछ तो फायदा हुआ। उसका नेक्स्ट स्टेप पता होने की वजह से हम आराम से इसे रोक सकते हैं। सब सुनने के बाद तेज प्रताप दत्त ने राहत की सांस ली। रिकॉर्डिंग से एक बात साफ है, सारी प्लानिंग विधिक करता है और उसे आगे एग्जीक्यूट करने का काम रॉबिन और मेलिसा का है। हमें रॉबिन और मेलिसा को पकड़ने पर भी ध्यान देना चाहिए। उनके कॉन्टैक्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इल्लीगल तरीके से बॉम्ब बनाते हैं, अमन ने कहा। सही कह रहे हो तुम, और इस काम के लिए उससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता, मिस्टर दत्त ने मुस्कुरा कर कहा। क्या कोई और भी है जो उनके पीछे है, मिस्टर गुप्ता ने पूछा। हाँ, कोई ऐसा जो रॉबिन को उससे भी ज्यादा जानता है। मैं उसे तुम लोगों की टीम में इंक्लूड कराने की कोशिश करता हूँ। उन्हें छोड़ो, ये बताओ उस लड़की को स्टेटमेंट के लिए कब लेकर आ रहे हो? अब तो उसका सच सामने आ गया है, मिस्टर दत्त ने अमन से पूछा। उन्हें वहाँ जो भी हुआ उस सब के बारे में पता था। अमन और आंशी की शादी का याद आते ही उन्होंने अमन से कहा, आई एम सो सॉरी अमन, तुम्हें उससे शादी करनी पड़ी जबकि तुम लावण्या से प्यार करते हो। अक्सर मिशन में इस तरह के काम करने पड़ते हैं, क्रिमिनल के पास जाना, शादी करना या उनके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना, पर सब कुछ एक एजेंट की सहमति और कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। तुम्हारे साथ सब कुछ अचानक हुआ, उसके लिए मुझे अफसोस है। अफसोस जताने जैसा कुछ नहीं है सर, मैं इतनी अंडरस्टैंडिंग हूँ कि सब समझती हूँ। मुझे अमन पर पूरा भरोसा है। रही बात शादी की, तो उसे ना तो वो लड़की मानती है और ना ही अमन। शादी रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, जो आग के आगे चार फेरे ले भी लिए। अक्सर टीवी और शूटिंग में इस तरह की नकली शादियां होती रहती हैं, लावण्या ने अमन की तरफ से सफाई दी। उसकी बात सुनकर मिस्टर दत्त मुस्कुरा कर बोले, नहीं लावण्या, फ़र्क होता है। शूटिंग के लिए की गई शादी अलग होती है और पूरे रस्मों रिवाज से की गई शादी अलग। कल को तुम और अमन भी शादी करोगे, क्या तब भी शादी को लेकर तुम्हारी यही ख्याल रहेंगे? मिस्टर दत्त की बातों से लावण्या का सर शर्म से झुक गया, वो चुप हो गई। कुछ देर के लिए उस मीटिंग हॉल में चुप्पी छाई रही। फिर मिस्टर दत्त ने मीटिंग को ख़त्म करते हुए कहा, कल उसे यहाँ ले आना, अगर वो बेगुनाह है तो वादा करता हूँ उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। अमन ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और कहा, सर मुझे एक फेवर चाहिए था। चिंता मत करो, उससे पूछताछ तुम ही करोगे, मिस्टर दत्त ने मुस्कुरा कर कहा। उन्होंने जाने से पहले एक बार लावण्या और अमन की तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। उनकी अनुभवी निगाहें बहुत कुछ समझ रही थीं, पर इस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा।